शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद अली गुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में बैतुल मुकद्दस अभियान की तैयारी में मिलिट्री इंजीनियरिंग के रोल पर चर्चा करेंगे।
पिछले कार्यक्रम में हमने खुर्रम शहर को आज़ाद कराने के लिए विशाल अभियान बैतुल मुकद्दस शुरू करने के लिए सेनाओं की तैयारी के बारे में बताया। जिस क्षेत्र में बैतुल मुकद्दस अभियान अंजाम पाने वाला था वो इतना विशाल और रणनीतिक दृश्य से ईरान और इराक दोनों के लिए इतना अहम था कि दोनों ही देशों की सैन्य क्षमता का बड़ा भाग इस इलाके में केंद्रित था। दक्षिणी ईरान के अतिग्रहित इलाकों को अपने कब्जे में बाकी रखने के लिए सद्दाम पूरब और पश्चिम के दो ब्लॉकों के सैन्य उपकरण उनकी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक मदद पर निर्भर था।
इसके विपरीत इस्लामी गणतंत्र ईरान दो बड़ी शक्तियों की ओर से लगाई गई कठोर सैन्य व आर्थिक पाबंदियों से घिरे होने के बावजूद ईश्वर, आस्तिक व वीर युवाओं पर निर्भर था, जो ईश्वर पर भरोसे के साथ अपने देश की भूमि को आज़ाद कराने और इस्लामी क्रांति की पवित्र आकांक्षाओं को व्यवहारिक बनाने के लिए एक के बाद एक अमर शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। बैतुल मुकद्दस अभियान का बड़ा भाग इस्लामी क्रांति संरक्षक बल IRGC के कंधे पर था कि जिसकी सभी इकाइयां जनता के सभी वर्ग के आम लोगों से बनी थी।
बैतुल मुकद्दस अभियान में उसके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और कारून नदी पर पुल बनने की ज़रूरत के मद्देनज़र फतहुल मुबीन अभियान की तुलना में बड़े पैमाने पर विशेषज्ञ स्तर की इंजीनियरिंग के काम की ज़रूरत थी। पवित्र प्रतिरक्षा के काल में एक संगठन जिसका अभियान की सफलता में अहम रोल था, जिहाद साजंदगी नामक संगठन था। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद पिछड़े हुए गांवों और शहरों के लिए ज़रूरी मूल रचनाओं के निर्माण और निर्धन इलाकों की जनता की मदद के लिए जिहाद साजिंदगी संगठन की स्थापना हुई।
जिहाद सजंदगी संगठन ने देश पर सद्दाम के हमले के आरंभ में ही सड़क, पुल और मोर्चे के निर्माण के लिए ज़रूरी मशीनी उपकरण की ज़रूरत के मद्देनज़र अपनी गतिविधियों का दायरा फैलाया और बिना विलंब के अपने उपकरणों के बड़े भाग को युद्ध के इलाकों के लिए रवाना किया। पवित्र रक्षा के साहित्य में जिहाद सजंदगी के कर्मचारियों को संगर साजा ने बी संगर की उपाधि से याद किया जाता है। जिहाद साजंदगी के बहुत से सदस्य पवित्र रक्षा के 8 साल के दौरान शहीद हुए।
जिहाद साजंदगी संगठन ने बड़े पैमाने पर काम किया और बैतुल मुकद्दस अभियान में भी उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि इस संगठन ने इंजीनियरिंग क्षेत्र की मुख्य जिम्मेदारी खुद संभाली। अलबत्ता IRGC और सेना की इंजीनियरिंग इकाई भी खास तौर पर पुल निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। इंजीनियरिंग के काम में जिहाद साजंदगी, सेना और IRGC के योग से इंजीनियरिंग का नया ढांचा वजूद में आया। बैतुल मुकद्दस अभियान में जिहाद साजंदगी संगठन ने इंजीनियरिंग के 100 उपकरणों और दूसरे साधनों के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस अभियान में सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग की 3 बटालियन, 1 इंजीनियरिंग गुट, 1 फ्लोटिंग ब्रिज अर्थात तैरते हुए पुल का निर्माण करने वाली बटालियन, सेना की GSP पुल का निर्माण करने वाली बटालियन नदी को पार करने के अभियान में मदद कर रही थी।
कुल मिलाकर इस अभियान में सेना के 63 मशीनी उपकरण और IRGC के 60 उपकरण शामिल थे। अभियान की पहली रात कारू नदी पर PMP पुल के निर्माण का काम थल सेना की जिम्मेदारी थी। बैतुल मुकद्दस अभियान की अहम बात कारून नदी को पार करना और अहवास खुर्रमशहर मार्ग पर इराकी सेना के पीछे पहुंचना था। अभियान की पहली रात 5 में से 3 पुल बनकर तैयार हुए ताकि उस पर से सेना गुजर सके। अहवास खुर्रम शहर की ओर से अभियान के बजाय कारू नदी को पार करने की योजना दुश्मन का अपनी योजना की भनक न लगने देने के सिद्धांत के तहत बनाई गई।
साक्ष्य दर्शाते थे कि दुश्मन अभियान शुरू होने से पहले इस्लामी जियालों के हमले के संबंध में कुछ हद तक सतर्क हो गया था, लेकिन समय और टैक्टिक के बारे में उसे पता नहीं था। बासी दुश्मन ना अपनी समीक्षा में ये सोच पाया था कि ईरानी जियाले उत्तरी छोर से कार्रवाई करेंगे। बासी सेना के कमांडरों ने अपने आकलन में सिर्फ एक पुल के निर्माण और हल्के हमले की कल्पना की थी। अभियान के पहले चरण के बाद दुश्मन ने इस्लामी जियालों के अभियान के केंद्रीय बिंदु और उसके लक्ष्य का अंदाज़ा करने के बाद बड़े स्तर पर जवाबी हमला किया।
सद्दाम ने जवाबी हमला करने के लिए तैयार फौज को यह संदेश दिया था, वे टुकड़ियां जिनके मोर्चे हाथ से निकल गए हैं आज के दिन रात में अपने मोर्चों को फिर से वापस लें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बासी दुश्मन सेना के जवाबी हमले का लक्ष्य ईरानी सेना को अहवास खुर्रमशहर मार्ग के पीछे ढकेलना और फिर सरे पुल इलाके का सफाया करना था। अहवास खुर्रमशहर मार्ग एकमात्र पोजीशन थी जिसके पीछे ईरानी सेना तैनात होकर दुश्मन के जवाबी हमले का मुकाबला करे। ईरानी सेना अगर पीछे हटती तो वासी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर कोई प्राकृतिक रुकावट नहीं थी जो उसकी मदद करती।
सद्दाम की बासी सेना मार्ग के हाथ से चले जाने के बाद विघटन का शिकार हुई और अपने पीछे 5वीं और 6वीं डिवीजन के खतरे के साथ खुर्रम शहर में मौजूद अपनी टुकड़ी को नाकाबंदी में घिरा हुआ पा रही थी। इसलिए दुश्मन से सरे पुल और अहवास खुर्रम शहर मार्ग को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए लड़ाई और ईरानी सेना द्वारा उसकी रक्षा दोनों पक्षों की हार या जीत के अर्थ में थी। दुश्मन ने अहवास खुर्रम शहर मार्ग पर फिर से कब्जे के लिए अपनी 10वीं बख्तरबंद ब्रिगेड के साथ जवाबी हमला शुरू किया। जंग के शोले भड़क उठे।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के जियालों के पास न तो उपयोगी बख्तरबंद फोर्स थी और न ही प्रभावी शेलिंग इकाई थी, इसलिए उन्होंने टैंक के साथ लड़ना शुरू किया। इस लड़ाई में इराकी टैंक मार्ग तक पहुंचने और उसके एक भाग पर कब्जा करने में सफल हो गया। अगर टैंक मार्ग पर तैनात हो जाते तो ईरानी सेना की एकमात्र रक्षा पंक्ति छिन्न भिन्न हो जाती, जिसके नतीजे में उसे पीछे हटना पड़ता, और अगर ऐसा होता तो कारून नदी के आज़ाद हुए सारे पश्चिमी क्षेत्र खतरे में पड़ जाते।
दुश्मन की सेना मार्ग पर बहुत देर तक नहीं रुक सकी। बलिदान की भावना से ओतप्रोत ईरानी जियालों की वीरता के आगे बासी सेना के टैंक नाकारा हो गए, जिससे बासी का जवाबी हमला भी नाकाम हो गया। श्रोताओं, कार्यक्रम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दें।